ये आकाशवाणी दिल्ली है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की बैठक में कर्मचारियों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने की। आयुष मंत्रालय नई दिल्ली में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का कल आयोजन करेगा। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने राजधानी में बढ़ते बिजली लोड के मद्देनजर बिजली कंपनियों को बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नई तकनीक अपनाने के निर्देश दिए। यमुना नदी के जलस्तर में कमी के कारण वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का स्तर 668.70 फीट तक गिरा। और 21वें दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर सचिन टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर मिहेल निकितेंको पर शानदार जीत दर्ज की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कर्मचारियों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। इस दौरान सांसद बांसुरी स्वराज, एनडीएमसी अध्यक्ष केशव चंद्र और उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट।
बैठक में एनडीएमसी के मृतक कर्मियों के परिवारों पर लगे जुर्माने को एक नई स्कीम के तहत माफ कर दिया गया है। एनडीएमसी अस्पताल के कर्मचारियों के रोग देखभाल भत्ता को 700 रुपए से बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया है। श्री वर्मा ने बताया कि यह 1 जुलाई 2017 से प्रभावी माना जाएगा। बैठक में एनडीएमसी की 35 साल पुरानी पावर केबल लाइनें बदलने का भी निर्णय लिया गया, जिससे बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित और बेहतर होगी। नगर पालिका में जल्द नई भर्तियों और प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। श्री वर्मा ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के मकान की समस्या का समाधान भी जल्द किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान के साथ आदर्श।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए कल सुविधा शिविर का आयोजन करेगा। ये शिविर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में बिजली कनेक्शन, संपत्ति कर, पेंशन योजनाएं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई, जल भराव, सड़क मरम्मत, बारात घर और पार्क बुकिंग सहित अन्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही एनडीएमसी ने उपयोगकर्ताओं के लिए एक संपर्क रहित शिकायत निवारण तंत्र के रूप में जन सुविधा पोर्टल भी लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय कल नई दिल्ली में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन करेगा। ये शिखर सम्मेलन 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें दुनिया भर के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थानों और स्वास्थ्य समुदायों के सहभागी भी वर्चुअली शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में बहरीन, अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया सहित 4 से अधिक देशों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दशक भर के प्रभाव के अध्ययन संबंधी रिपोर्ट योग प्रभाव जारी की जाएगी। योग के दशकीय प्रभाव पर एक ई बुक और योग अनुसंधान के विज्ञान संबंधी विश्लेषण पर रिपोर्ट का अनावरण भी किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में विभिन्न विषयगत सत्र होंगे। इनमें गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए योग, सामान्य योग प्रोटोकॉल पर अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रभाव आकलन, योग टेक इनोवेटर्स प्रेजेंटेशन और सभी के लिए योग की परिकल्पना जैसे विषय शामिल होंगे। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
दिल्ली पुलिस की वेलफेयर यूनिट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष पुलिस आयुक्त अतुल कटियार ने स्वैच्छिक रक्तदान को करुणा समाज सेवा का प्रतीक बताया। इस शिविर में 108 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। श्री कटियार ने कहा कि इस शिविर के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने नागरिक कर्तव्य और मानवीय सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। एयर इंडिया ने अपनी 16 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मार्ग में बदलाव किया है। कुछ उड़ानों को वापस बुला लिया है। इसराइल के ईरान पर कल रात किए गए भीषण हमले के बाद एयर इंडिया ने यह फैसला लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिन उड़ानों में बदलाव किया गया है उनके यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। एयर इंडिया के अनुसार इन उड़ानों के यात्रियों के लिए टिकट रद्द करने पर किया किराया वापस देने या फिर दूसरी उड़ानों से टिकट दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। जिन उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है या वापस बुलाया गया है उनमें दिल्ली और मुंबई से लंदन तथा न्यूयॉर्क जाने वाली आने वाली दोनों उड़ानें शामिल हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ानों की ताज़ा स्थिति की जानकारी के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट देखें। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट पर हवाई परिचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि ईरान, इराक और पड़ोसी क्षेत्र में हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आने वाले एयर इंडिया विमान को आज उड़ान भरते ही बम की धमकी मिली, जिसके कारण विमान ने थाई द्वीप पर इमरजेंसी लैंडिंग की। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि विमान में सवार सभी 156 यात्रियों को सुरक्षित उतार दिया गया और पूरी सुरक्षा जांच की गई। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने एयरपोर्ट कंटीजेंसी प्लान को भी सक्रिय कर दिया। हालांकि शुरुआती जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला। थाईलैंड के अधिकारियों ने कहा कि वे उस यात्री से पूछताछ कर रहे हैं जिसने धमकी की सूचना दी थी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने कहा कि घटना को लेकर वे थाईलैंड के अधिकारियों के संपर्क में हैं। यह घटना अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के एक दिन बाद हुई, जिसमें 240 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने राजधानी में बढ़ते बिजली लोड को देखते हुए सभी बिजली कंपनियों को उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पुराने ग्रिडों को बदलने और नई तकनीक अपनाने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री ने हर शहर में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए बिजली कंपनियों और ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान श्री सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हर नागरिक को सुचारू और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने के बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए। दिल्ली में भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अहमदाबाद विमान हादसे को पूरे देश के लिए दर्दनाक बताया। उन्होंने कहा कि किन कारणों से विमान एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर नहीं जा पाया, ये जांच में सामने आएगा।
जो भी शोक संतप्त परिवार है, मैं अपनी ओर से उन सबको संवेदनाएं प्रकट करता हूं और मेरा ये भी आग्रह रहेगा एयर इंडिया से और बाकी सभी विमान एजेंसियों से कि एक बार इस घटना को देखते हुए इस प्रकार के सभी जहाजों का टेक्निकल ऑडिट या दूसरा किसी भी प्रकार का ऑडिट हो वो तुरंत कराना चाहिए, जिससे लोगों के मन में जो इस हादसे को लेकर के एक डर बैठा है वो डर निकले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल गए और एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से देश स्तब्ध है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा भी किया और बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों अन्य लोगों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। बाद में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वे हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों से भी मिले। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में बचे एकमात्र यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश से अस्पताल जाकर मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कल हुई विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने विजय रूपाणी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया, जिसमें सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय भी शामिल है। किस्मत कब कैसा मोड़ लेगी कोई नहीं जानता। एक छोटा सा संयोग भी जीवन और मृत्यु का फैसला कर देता है। कल हुए एयर इंडिया विमान हादसे में यही देखने को मिला। एक रिपोर्ट।
गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान उन चंद लोगों में से एक हैं जो किस्मत से इस हादसे से बाल बाल बच गईं। उन्हें कल उसी एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाना था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। भूमि ने बताया कि अहमदाबाद में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने की वजह से वो फ्लाइट की चेक इन गेट पर 10 मिनट देरी से पहुंची थी, जिसके कारण उन्हें विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। देरी से पहुंचना उनके लिए वरदान साबित हुआ। हालांकि अन्य लोग भूमि जितने भाग्यशाली नहीं थे। एयर इंडिया की इसी उड़ान से एक डॉक्टर दंपति लंदन जा रहा था, उनके सपने दुर्घटना की त्रासदी में खत्म हो गए। इसी तरह 35 वर्षीय एक महिला अपनी बेटी को वडोदरा में अपने माता पिता के पास छोड़कर लंदन जा रही थी, लेकिन वो अपने घर नहीं लौट पाई। लंदन में छुट्टियां बिताने को लेकर उत्साहित दो बहनें भी इसी उड़ान में थीं। विमान में सवार होते समय वे सभी यात्री इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि इस उड़ान की लैंडिंग कभी नहीं होने वाली। स्वाति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
यमुना नदी के जलस्तर में कमी के कारण वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का स्तर 668.70 फीट तक गिर गया। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि इसके परिणाम स्वरूप वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पीने का पानी 25-30% तक प्रभावित हुआ है। जल बोर्ड ने कहा कि इस कारण मजनू का टीला एनडीएमसी क्षेत्र आईटीओ एलएनजेपी अस्पताल डिफेंस कॉलोनी सीजीओ कॉम्प्लेक्स राजघाट डब्ल्यूएचओ आईपी इमरजेंसी रामलीला ग्राउंड दिल्ली गेट सुभाष पार्क गुलाबी बाग तिमारपुर एसएफएस फ्लैट्स पंजाबी बाग आजादपुर शालीमार बाग वजीरपुर लॉरेंस रोड मॉडल टाउन जहांगीरपुरी मूलचंद साउथ एक्सटेंशन ग्रेटर कैलाश बुराड़ी सिविल लाइन्स कमला नगर शक्ति नगर करौलबाग पहाड़गंज राजेंद्र नगर पटेल नगर और आसपास के इलाकों में पानी की आपूर्ति कम दबाव से होगी। बोर्ड ने नागरिकों से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने का अनुरोध किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने आनंद पर्वत थाना क्षेत्र में एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 1 किलो 842 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार आरोपी नेपाल सीमा से गांजा खरीदकर दिल्ली में भेजता था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर मिहेल निकितेंको पर 9वें राउंड में शानदार जीत के बाद 21वें दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में एकल बढ़त हासिल कर ली है। इस जीत के साथ गुप्ता अब 9 राउंड में 8 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। एक रिपोर्ट।
दिन के सबसे बड़े मुकाबले में गुप्ता ने सफेद मोहरों से खेलते हुए सह लीडर निकितेंको को मुकाबले में मात दी। इस परिणाम से निकितेंको 7 अंकों के साथ पीछा करने वाले समूह में शामिल है। प्रमुख मुकाबलों में अर्मेनियाई जीएम मेमिकॉन गारिबियान और भारतीय जीएम एसएल नारायणन ने ड्रॉ खेला, जिससे दोनों के 7-7 अंक हो गए। वियतनामी जीएम गुयेन वान हुई ने भारत के जीएम दीप्तियान घोष को ड्रॉ पर रोका, जिससे दोनों के भी 7 अंक हो गए। स्वीडिश जीएम विटाली सीवोक ने आईएम नितिन एस के साथ ड्रॉ खेला, जिससे वे 7 अंकों के समूह में बने रहे। इस बीच जीएम आदित्य एस सामंत ने बेलारूसी जीएम एलेक्सिस एलेक्जेंड्रोव पर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की, जिससे उनके 7.5 अंक हो गए। उनके साथ दूसरे स्थान पर आईएम अरुणायक घोष भी है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के तत्वावधान में आयोजित इस टूर्नामेंट में 20 से अधिक देशों के 2,500 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें 24 ग्रैंड मास्टर शामिल है तथा इसकी पुरस्कार राशि 1,21,00,000 रुपए है। ये भारतीय और एशियाई शतरंज सर्किट में एक प्रमुख आयोजन बना हुआ है। श्रेणी सी, जिसमें 1,250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसका अंतिम दौर शनिवार को निर्धारित है। इस वर्ग में कुल 35,00,000 रुपए दाव पर लगे हैं, जिसमें विजेता को 4,00,000 रुपए मिलेंगे। अथर की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
मौसम। राजधानी दिल्ली में आज तापमान में हल्की गिरावट के चलते चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की बैठक में कर्मचारियों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। आयुष मंत्रालय कल नई दिल्ली में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन करेगा। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने राजधानी में बढ़ते बिजली लोड के मद्देनजर बिजली कंपनियों को बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नई तकनीक अपनाने के निर्देश दिए। यमुना नदी के जलस्तर में कमी के कारण वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का स्तर 668.70 फीट तक गिरा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।